सर्वशास्त्राधिपीयुषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखानितांश नमों विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन शुभ श्रीमद् भागवत के कक्षा में हम सब एकत्रित हुए हैं, तो सबको धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि इतनी बड़े महामारी फैली हुई है विश्व में और उसका सब स्टैटिस्टिक्स परिसंख्यन कलना गणना जो भी है सब चारों ओर सर्वविदित है, फिर भी वृंदावन धाम के भक्त लोग इतने संख्या में एकत्रित होते हैं भागवत कथा सुनने के लिए और हरि नाम के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि वास्तविक प्रतिरोधक शक्ति यही बढ़ाता है। जैसे कहते हैं कि गोमूत्र रोज पीना चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर ये जो आजकल ये करुणा चल रहा है, करुणा कोरोना का प्रभाव कम होगा। उसी प्रकार से हम जब प्रत्येक दिन नियमित रूप से जप और दर्शन वैष्णव संघ और भागवत का पाठ करते हैं तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति ताजा रहती है, फिर हम माया से बचते हैं। तो श्रीमद् भागवत के इस छठे स्कंद में अध्याय क्रमांक 16 और शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट, श्लोक 11। इसमें हम आज पाठ करेंगे। नादत आत्मा ही गुणम न नादत आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीन बदासीनः परावरदृक् ईश्वरः न नहीं आदते स्वीकार करता है आत्मा परमात्मा ही निश्चय ही गुणम सुख न नहीं दोषम दुख न ना तो क्रियाफलम किसी कर्म का फल उदासीनवत उदासीन पुरुष की तरह आसीनः बैठे हुए हृदय में पर अवरद्रक कार्य और कारणों को देखते हुए ईश्वर परमेश्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कार्य और कारणों का सृष्टा यह आत्मा सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। वह भौतिक देह स्वीकार करने या ना करने के लिए परम स्वतंत्र है और भौतिक शरीर न होने के कारण वह सदैव उदासीन तथा तटस्थ रहता है। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में उनके गुणों को धारण किए रहता है, अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, बद्ध जीव के शत्रु तथा मित्र दोनों होते हैं। वह अपनी स्थिति के कारण गुण और दोषों से प्रभावित होता है, किंतु परमेश्वर तो सदैव दिव्य है। ईश्वर होने से ड्वालिटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में द्वैतता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह कहा जा सकता है कि वह अच्छे या बुरे कर्मों के कारणों तथा फलों का साक्षी स्वरूप हृदय में स्थित रहता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि उदासीन का अर्थ यह नहीं है कि वह क्रियाहीन रहता है, वरन इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण, जब न्यायाधीश जैसे जज कहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी पक्ष उपस्थित होते हैं तो वह निष्पक्ष उदासीन बना रहता है, किंतु वह फिर भी प्रसंगानुसार न्याय करता है। कर्मों के प्रति पूर्णतया उदासीन तथा या निष्पक्ष रहने के लिए हमें परम उदासीन पुरुष के चरणाबिंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महाराज चित्रकेतु को यह उपदेश दिया गया कि पुत्र की मृत्यु जैसी दुखदायक घटना के उपस्थित होने पर उदासीन रह पाना असंभव है। फिर भी चूंकि ईश्वर हर तरह से संतुलन करना चाहते हैं, अतः सबसे सुगम मार्ग यही है कि उन्हीं पर आश्रित हो रह जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। सभी परिस्थितियों में द्वैत भाव से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा है 2:47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगस्तो अकर्मणि। तेरा अधिकार नियत कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। तू अपने को कर्म फल का हेतु भी मान और कर्तव्य न करने में भी आसक्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का उत्तरदायित्व निभाए और कर्म फल के लिए भगवान के पर आश्रित रहे। हरे कृष्ण। तो जब भी ये श्लोक सामने आता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको जब हम युवाओं को प्रचार करते हैं उसको एक वाक्य में कहते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रसंग में आप सुनते आ रहे हैं ये चित्रकेतु महाराज की कथा, जो उनका पुत्र का देहांत हो गया है। 16वें अध्याय में शुरुआत होती है। श्रीधर स्वामीपाद एक सुंदर टीका में व्याख्या करते हैं। 16वां अध्याय का शुरुआत होती है, षोडशो तत्सुतो तय्येव विशोकी कृत्य तंग नृपम। इस 16वें अध्याय में पुत्र महाराज चित्रकेतु का पुत्र या राजकुमार के द्वारा के वचनों से विशोकी कृत्य तंग नृपम, राजकुमार के वचनों से शोक रहित बनाकर फिर क्या किए, आदिदेश महाविद्यांग नारद शेष तोषणीम। कौन बनाकर? नारद मुनि ने बनाया। नारद मुनि अपने राजकुमार के द्वारा, राजा के पुत्र के द्वारा प्रवचन देके वचनों से ही राजा को शोक रहित बना दिए। और भगवान शेष को प्रसन्न करने वाली उपदेश विद्या का उपदेश दिया। अर्थात इस 16 अध्याय में क्या वर्णन है कि राजकुमार के द्वारा जीवित करके प्रवचन देना महाराज चित्रकेतु को, और ऐसा नारद मुनि ने उपदेश किया कि जिसके वजह से चित्रकेतु महाराज स्वयं भगवान को दर्शन कर पाए, ये पूरा इसमें वर्णन है। तो अभी प्रसंग के अनुसार आप सब अवगत हैं कि अपनी योग शक्ति के प्रभाव से नारद मुनि जो चित्रकेतु के पुत्र जो जिनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था, उनको जीवित करा दिए और वो बोलने लगा। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कहीं देखते हैं हम लोग कोई मृत व्यक्ति कभी बोलता नहीं है, लेकिन ऐसा योग शक्ति का प्रभाव है कि वो जीवित हो गए और कहने लगे। बहुत सुंदर व्याख्या है, आप कई दिनों से सुन के आ रहे हैं। तो आज इस श्लोक में उनके उस जीवात्मा का प्रवचन का निष्कर्ष है, अंतिम श्लोक है। फिर अगले कल से फिर श्री बादरायणी उवाच सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। तो मोटा मोटी वो आत्मज्ञान दिए। कल्पना कीजिए ऐसा स्थिति जहां हमारा बेटा देहांत हो गया हो, किसी गृहस्थ परिवार का पुत्र शरीर छोड़ दिया हो, मां को कैसा लगेगा? सबसे ज्यादा दुख लगेगा, और पिता को दुख लगेगा ही, बाकी सब संबंधियां सब एकत्रित हुए हैं, और जवान बेटा एकदम कम उम्र का लड़का शरीर छोड़ देता है, तो छाती पीट के माथा पीट के सब रोते हैं, स्वाभाविक है, दुख तो लगेगा ही। लेकिन उस समय सबके देखते देखते ऐसा होता है कि मान लो वो बच्चा फिर से बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है, तो सब लोग आश्चर्य होके एक टक से आंखें फाड़ फाड़ के कान खोल के सुन रहे हैं, देख रहे हैं भी और सुन रहे हैं। ये क्या अद्भुत हो गया कि फिर से जीवित हो गया और मृत बच्चा जो है बोलने लगा। तो उस समय का जो प्रवचन या वक्तव्य या भाषण कितना पावरफुल होगा। अभी हम यहां वक्ता बैठे हुए हैं, आंख खोल के और कान मतलब मुंह से बोलते, फिर भी कई लोग आंख बंद कर देते हैं और कान भी बंद कर देते हैं श्रोतागण। लेकिन अगर कोई ऐसे मरा हुआ व्यक्ति एकदम अचानक से उठ के बोलने लगे, सबसे पहले तो कई लोग तो डर के भाग जाएंगे, कौन आ गए कि जीवित कैसे हो गया, भूत हो गया क्या? लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या अद्भुत है। जानते हैं नारद मुनि और अंगिरा मुनि है, उनके प्रभाव से वो मृत जो बालक है वो जीवित हो गया और फिर कहने लगा। तो उसमें बहुत सुंदर वो वर्णन करते हैं कि सबसे पहले ये बताइए, वो बच्चा भी ये कहते हैं, आपने सुना है कि मैंने देवताओं से लेके मनुष्य और इतर जोनियों में कई शरीर धारण किए हैं, ये कौन से मम्मी पापा है मुझे बताओ? ये जो माता पिता मेरे सामने रो रहे हैं, कौन से माता पिता हैं, किस जन्म के, किस शरीर के? जीवात्मा बोल रहा है ना, शरीर नहीं बोल रहा है, जीवात्मा बोल रहा है। तो ऐसे मैंने कई माता पिता मेरे अलग अलग शरीर में बदल चुके हैं, तो ये एक और एक माता पिता। आज के तारीख में अगर कोई इस तरह से बोल दे तो जरूर उसको इंडिया टीवी में ले जाएंगे, खड़ा कर देंगे, जो सब किस्से चल रहे हैं टीवी में, जैसे होते रहते हैं, एक साल पहले हो तो कोई भक्त अगर ज्वाइन कर लिया तो बस उस टीवी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर एक एक बखेड़ा खड़ा करते हैं, बनाते हैं, और टीवी में बहस होता है, फिर इस्कॉन के खिलाफ बहुत सारा अपशब्द होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि वो पूछ रहे हैं कौन सी माता पिता। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्यों को बोल के अब इसमें कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि कहते हैं न आदते। कई बार थोड़ा सा समझने में हमें बुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा कि ये श्लोक आत्मा के बोल रहे हैं कि ये परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। श्लोक जब हम पढ़ेंगे, अब देखिए कहते हैं न आदते आत्मा, मान लीजिए आत्मा को, आत्मा के लिए परमात्मा ले, न आदते ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम। तो यहां कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा कार्य और शरीर आदि गुण या दोष या कर्म फल को नहीं ग्रहण करता है। आत्मा जो है, जैसे हम सब आत्मा है ना, किसको डाउट है हाथ उठाओ, कोई चुनौती दे सकता है तो हाथ उठाओ जरा, हम सब आत्मा है। कहते हैं कि आत्मा शरीर आदि के गुण या दोष या कर्म फल, मतलब जो गुण अर्थात सुख, दोष अर्थात दुख, और क्रियाफलम कर्म फल, इसको ग्रहण नहीं करता है। आत्मा को रोटी चपाती सब्जी खीर मालपुआ नहीं चाहिए, या आत्मा को कोई भी प्रभावित ना करो ना या डरो ना, कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। आत्मा को ना गुण ना दोष ना सुख ना दुख ना किसी प्रकार का क्रियाकलाप क्रियाफलम कर्म फल ग्रहण करता है। फिर क्या है वो, उदासीन, वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंट, उदासीनवत, उदासीन भाव से वो स्थित रहता है हृदय में, और कार्य और कारण का साक्षी भी है। जो कार्य करते हैं, हमने जो भी कार्य किया, कुछ सामान उठाया, ये भी कार्य हुआ, कोई भी कार्य करते हैं, क्यों उठाए, उसका कारण जो भी समाज में शरीर के साथ होता है, सबका साक्षी के रूप में सब देखता ही रहता है। तो श्रीधर स्वामीपाद इसको इस तरह से व्याख्या किए हैं आत्मा के दृष्टि से, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्रील प्रभुपाद इसको परमात्मा के रूपक व्याख्या किए हैं, दोनों के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो इसमें कह रहे हैं, इससे पहले 9 और 10 नंबर श्लोक में ये जीव, जो जीवात्मा, ये अपनी चित्रकेतु महाराज और सारे पत्नियों को वर्णन करते हैं। थोड़ा सा हम आत्मा और परमात्मा के बीच में समानता या क्या अंतर है थोड़ा देख लेते हैं। पिछले 2 श्लोक में जो वर्णन हुआ है उसमें एक शब्द आता है नित्य, नित्य। अब आप लोग बताएंगे हां या ना बताएंगे, ठीक है। आत्मा और परमात्मा दोनों नित्य हैं, हां या ना, ठीक है। तो नित्य दोनों के लिए हो गया। अव्यय, अव्यय का अर्थ है जो व्यय नहीं हो सकता, इम्पेरिसेबल, जो नाश नहीं हो सकता, जिस जो नष्ट नहीं हो सकता, अव्यय। आत्मा और परमात्मा दोनों अव्यय, हां या ना, तो दोनों के लिए हो गया। फिर कहते हैं सूक्ष्म, ये जो मैं कह रहा हूं ना शब्द, ये ऊपर के पहले श्लोकों में वर्णन है, 9-10 नंबर श्लोक। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ है कि वो देखा नहीं जा सकता, सटल, इतना सूक्ष्म है कि कोई भी यंत्र नहीं है, खाली आंख से ऐसे ऐसे तो देख नहीं सकते, कोई यंत्र से भी इसको देख नहीं सकते। तो आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म है, हां या ना, तो ये दोनों के लिए हो गया। फिर कहते हैं सर्व आश्रय माया गुणी, इसका अर्थ यह है कि सबका यह आश्रय है, सर्व आश्रय था सबका यह आश्रय है, मान लीजिए सबको आश्रय देने वाले हैं। माया गुणी अर्थात ये माया के गुणों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। आत्मा और परमात्मा के लिए ये दोनों उपयुक्त, हाँ या ना? नहीं। परमात्मा के लिए? आत्मा के लिए नहीं। आत्मा सबका आश्रय नहीं है, सब आत्मा के आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा भेद है, आप समझ रहे ना? अभी परमात्मा के लिए उपयुक्त है कि सर्व आश्रय, ये ठीक है, परमात्मा सबके आश्रय है, हम सब पर भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं। और माया गुणी, माया के गुणों के द्वारा रचना करना ये आत्मा नहीं करता है, बल्कि ये माया के गुणों के अधीन है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा क्या, बहुत ही अंतर है। माया, मायाधीश है परमात्मा, मायाधीन है जीवात्मा। और यहां कहा गया है कि परमात्मा माया के गुणों से सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन आत्मा अपने डिजायर्स, अपने इच्छा और वासना से शरीर की रचना करता है। अगला शरीर कैसे मिलेगा, किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी जो डिजायर है, जो इच्छा है, जिसके वजह से हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं ना, वो उसके उसके परिणाम स्वरूप अगला शरीर मिलता है। अच्छा, और एक गुण है स्वदृक। स्वदृक का अर्थ है कि अभी जैसे इसमें इसमें आया है ना, ये पर अवरदृक, स्वदृक सेल्फ मैनिफेस्टिंग, इसको कैसे कहेंगे हिंदी में? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। तो परमात्मा के लिए और आत्मा के लिए क्या, कैसे इसको समझेंगे? दोनों के लिए स्वदृक, स्वयं प्रकाश है परमात्मा भी और आत्मा भी। और एक शब्द है पिछले श्लोक में, प्रिय कश्चिन न प्रिय स्वपर, अर्थात परमात्मा के लिए अगर देखा जाए, परमात्मा के लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। परमात्मा के लिए ना कोई प्रिय है, प्रिय कश्चिन न अप्रिय स्वपर, ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। ये परमात्मा, परमात्मा सबके लिए, मैं ठीक कह रहा हूं ना? परमात्मा सबके लिए। अब आत्मा के लिए क्या होगा? यही होगा ना, वास्तविक में यही है कि आत्मा का वास्तव में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। शरीर धारण करते हैं, उसका गुण अलग हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो शुद्ध चिदात्मा है वो भी, उसमें भेद नहीं है कि कोई प्रिय है कोई अप्रिय है, अपना पराया, सब शुद्ध जीवात्मा में भेद नहीं। हम देखते हैं वो जिसमें जो पहुंचे हुए बहुत संत महात्मा होते हैं, भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत उच्च स्तर में, वो भी ऐसे ही गुण है। और एक गुण है एकः सर्वधियम, एकः सर्वधियम, अर्थात जो परमात्मा है एक है प्रत्येक समय में, वन विदाउट सेकेंड, और सारे जीवात्माओं के साक्षी हैं। तो परमात्मा एक है, एक है कि अनेक है बताओ? एक है, प्रत्येक शरीर में परमात्मा एक है, अनेक दिखते हैं लेकिन एक है, और सबके साक्षी हैं, हाँ या ना? साक्षी के रूप में, जैसे हम सुनते हैं एक उदाहरण, दो पक्षी एक पेड़ में, है ना, प्रभुपाद जी उदाहरण देते, उपनिषद का उदाहरण है। लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा भले एक है, सच्चिदानंद है, लेकिन इस एक शरीर में रहते हुए, जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा, एक शरीर के बारे में वो जानता है, वो साक्षी है, लेकिन अनेक शरीर में नहीं है। और शरीर में जब आत्मा जाता है तो उसमें फिर वो थोड़ा सा शारीरिक गुण के प्रभाव से भेदभाव भी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा में बहुत समानता भी है और विविधता भी है। तो यहां जो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने परमात्मा के अर्थ का वर्णन किया है, अब सुनिए परमात्मा के अर्थ का क्या है इस श्लोक में। वो कहते हैं कि जैसे चक्रवर्ती बात का थोड़ा सुनते हैं, जो जीवात्मा है वो किसी को, जीवात्मा मतलब शरीर में जो जीवात्मा है, किसको, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा शत्रु है, ये मित्र है, इस प्रकार से देखते हैं। इसी को ही वो श्लोक में आप देखेंगे गुण और दोष या सुख या दुख, इस प्रकार से वो देखते हैं। सुख कब होता है, जब मेरा अपना है। दुख कब होता है, जब शत्रु भाव होता है, जब पराया भाव होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान ऐसे नहीं है। और भगवान कभी किसी का अपना पराया शत्रु मित्र इस रूप में नहीं देखते हैं। और भगवान उदासीन है, और भगवान ऐसे एक शब्द आया है इसमें कि क्रियाफलम, कर्म का फल भगवान भोगते नहीं है, लेकिन आत्मा जो शरीर में रहता है उसको सारे कर्म का फल सुख या दुख भोगना पड़ता है। तो और इस प्रकार से उदासीन है। तो लास्ट में चक्रवर्ती पाद कहते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है कि महद अनुग्रह, महद अनुग्रह अनुग्रह मूलम ईश्वर प्रपत्तिम बिना शोक मोहादि अयो अयम संसार दुस्तर एवेति किम। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि किसी का बेटा मर गया, थोड़ा समय के लिए चित्रकेतु महाराज के स्थान पे अपने आप को रखिए, अकेला बेटा, लाखों करोड़ों बेलपत्ता चढ़ाने के बाद एक पुत्र मिला। उड़ीसा में कहते हैं लख्य शिवे पूजी पाई छिपुओ। तो इतना मेहनत करने के बाद एक बेटा मिला, ठीक है। मैंने कहा ना थोड़े समय के लिए अपने आप को चित्रकेतु महाराज के स्थान पर रखिए कृतदिति के, और बेटा मर गया, पुत्र का देहांत हो गया, किसको दुख नहीं लगेगा। जरूर दुख लगेगा और चित्रकेतु महाराज को भी दुख लगा। लेकिन चक्रवर्ती पाद यहां एक बहुत सुंदर टीका में कहते हैं कि नारद मुनि के अनुग्रह से, ठीक है ना, नारद और अंगिरा मुनि आए, नारद मुनि के अनुग्रह से, कृपा से, उस बेटे पुत्र को, पुत्र जब जीवित हो गया और उसने, मृत पुत्र ने जीवित होकर जो प्रवचन दिया, जो वक्तव्य दिया, उससे चित्रकेतु महाराज का सारा शोक दूर हो गया, पूरा पूरी तरह से शोक दूर हो गया। नहीं तो किसी का बेटा मर गया आप जाके लेक्चर दीजिए, वो सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा 100%। किसका बेटे का देहांत हो गया है आप जाके उनको भगवद गीता सेकंड चैप्टर सुनाइए, किसके लिए दुख कर रहे हो। न जायते मृयते वा कदाचिन नायं भूत देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कोमर, ये सब सुनेंगे, ये कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन अब आगे आप सुनेंगे चित्रकेतु महाराज का शोक दूर हो गया। वो कैसे कैसे, क्योंकि यहां देखिए महद अनुग्रह मूलम ईश्वर प्राप्तिम बिना शोक। तो जब तक किसी भक्त का, महान संत का अनुग्रह कृपा जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है उस व्यक्ति को, उसका मन भगवान में नहीं लगता है। जब व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है, उसका सर्वस्व नाश हो जाता है, तब भी भक्ति नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कुछ है ही नहीं, उसका सर्वस्व ध्वंस हो गया, नाश हो गया। अत्यंत प्रफुल्लित होने पर भी वो शरण में नहीं आएगा। लेकिन अगर भगवत महत अनुग्रह है, किसी संत महात्मा का अनुग्रह है, ठीक समय में उसको, उसके सेंसिटिव, उसके जो, उसको टच कर देते हैं, स्पर्श करते हैं और उसको सहानुभूति देते हैं, उससे फिर वो भगवान के शरण में चला जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, उचित समय में कोई भक्त आ गया, कोई संत महात्मा गुरु महाराज का प्रवचन सुन लिए, नहीं तो वो व्यक्ति सुइसाइड करने वाला था। यस, ऐसा कई उदाहरण है, व्यक्ति आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी समय कोई ग्रंथ मिल गया, कोई भक्त आ गए जीवन में, कोई किसी का प्रवचन सुन लिए, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है और फिर वो सारा दुख धीरे धीरे भूल जाता है और भगवान के शरण में आ जाता है। तो केवल और केवल महद अनुग्रह से होते, भक्तों की कृपा से होती है। तो ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि एक सुंदर उदाहरण देखिए, परमात्मा के बारे में जानना है ना, थोड़ा सा ये जो श्लोक के अनुरूप श्लोक भगवद गीता में 5:15 भगवद गीता 5:15 नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान 5:15 श्लोक में कहते हैं परमेश्वर, जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि अगर आप कहते हैं परमात्मा हमारे साथ हमेशा है, साक्षी के रूप में है, ठीक है ना, तो जो कर्म करते हैं हम लोग, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, सही कर्म करें या गलत कर्म करें, जो भोगते हैं वो हम क्यों भोगते हैं, परमात्मा क्यों नहीं भोगता है, वो भी तो है, देख रहा है साक्षी के रूप में। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं देखो, नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतं विभु। भगवान का रोल क्या है इसमें, कहते हैं परमात्मा ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना पुण्यों को, किंतु सारे अज्ञान है ना वृतम ज्ञानम, सारे देहदारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देता है। वो अज्ञान की वजह से परमात्मा को देख नहीं पाते, परमात्मा की तरफ हम मुड़ नहीं पाते, परमात्मा की आवाज सुन नहीं पाते। हमारे साथ परमात्मा हमेशा के लिए हैं, रहेंगे, लेकिन हम में से कितने लोग परमात्मा की आवाज सुने हैं। जो भक्त होते हैं वो जानते हैं, सुनते हैं परमात्मा अर्थात विवेक। एक सुंदर व्याख्या चक्रवर्ती पाद कहते हैं, परमात्मा उदासीन के समान है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, केवल देखते हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में रहते हैं। लेकिन बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं इस श्लोक की टीका में, कहते हैं कि जो भक्त है उनके लिए स्पेशल फेवर रहता है, वही परमात्मा भक्तों के लिए विशेष दृष्टि रखते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा और भक्तों के संघ के द्वारा। नहीं तो बाकी जितने भी 84 लाख योनि है सबके लिए वो चार भुजाधारी परमात्मा के रूप में रहते हैं, ना किसका सपोर्ट करते हैं ना विरोध करते हैं, ऐसे ही उनका है, और ना किसी का फल भोगते हैं। भगवान ने अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से सबको क्लियर कर दिया, देखो ये मत समझना कि मैं सबके हृदय में है तो तुम जो करोगे वो मुझे भोगना पड़ेगा ना। और आगे भी कहते हैं 13वां अध्याय में, थोड़ा सा देखिए, यही जो मैं कह रहा था, उपद्रष्टानुमंता च, बोलिए, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। ये जो परमात्मा है शरीर में भोक्ता है, ईश्वर है, परम स्वामी है, और उपद्रष्टा का अर्थ क्या है, साक्षी के रूप में है, साक्षी, साक्षी के रूप में क्या कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, साक्षी के रूप में है, और अनुमंता, अनुमति देने वाले के रूप में है। कुछ नहीं कहेंगे, कोई गलत दृश्य देखना चाहता है इंटरनेट में, टीवी पे, वीडियो पे, परमात्मा नहीं, एक मत देखो, टीवी बंद कर दो। कोई भी गलत कार्य करना चाहता है गलत, परमात्मा बिल्कुल साक्षी के रूप में है, कोई अच्छे काम करे या बुरे काम करे ऐसे ही रहेंगे, और कर्म करने के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए वही परमात्मा थोड़ा सा और विशेष रूप धारण करते हैं और उनको गाइड करते हैं। आप में से कई लोगों का अनुभव होगा, जब भी हमारे मन में कुछ दुर्विचार आता है या हम कुछ कुकर्म करते हैं तो अंदर से एक आवाज आता है ना, अंदर से एक आवाज, नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो कौन करता है, कौन, वही परमात्मा है। लेकिन इतना है कि बाकी लोग परमात्मा को शट डाउन कर देते हैं, स्नूज कर देते हैं, सुनते ही नहीं। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है वो परमात्मा की आवाज को जान लेता है, अरे पता नहीं मन अच्छा नहीं लगता है, नहीं जाना चाहिए वहां, ऐसा कहते हैं, या दिल से कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। तो जो जितना शुद्ध है भगवान के भक्ति में आगे है तो वो परमात्मा की आवाज को सुन सकता है। और बेस्ट उदाहरण है, हमेशा के लिए याद रखिए, चाहे खुद के लिए या प्रचार करने के लिए या भक्ति शास्त्री में एग्जाम देने के लिए, किसी के लिए भी, जज का एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, विचारपति जो मुख्य न्यायाधीश, ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। आप देखें कभी कोई कोर्ट का सीन होगा तो वो कैसे रहते हैं, परमात्मा की तरह रहते हैं, दोनों तरफ का कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, और लोगों को लगता है क्या है, कुछ बोल नहीं रहे, उदासीन रहते हैं ऐसे। लेकिन उदासीन का अर्थ नहीं कि क्रियाहीन होना, उसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उदासीन रहते हैं लेकिन बाद में फिर निर्णय देते हैं, है ना, किसको पुरस्कार देना, किसको दंड देना, फाइनल जजमेंट आता है, ठीक है मंदिर बनना चाहिए तो बनेगा, आप समझ गए तो निर्णय देते हैं कि नहीं, तो ऐसा देखते हैं, दोनों पक्ष का सुनते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही रहते हैं लेकिन निर्णय देते हैं। तो अंत में एक छोटा सा, 5 मिनट में एक छोटा सा आपको कथा सुनाता हूं, एकदम और क्लियर हो जाता है। प्रभुपाद जी के जो लास्ट में अंत में कहते हैं, प्रभुपाद जी भावार्थ में कहते हैं कि महाराज चित्रकूट को यह उपदेश दिया गया था कि पुत्र की मृत्यु जैसी दुखदायक घटना उपस्थित होने, उदासीन रहना असंभव है, फिर भी चित्रकूट महाराज अपने संतुलन को बनाए रखे। इसका कारण यह है कि वो भगवान के और नारद मुनि के आश्रित हैं और भक्ति करते। तो प्रश्न यह है, भक्तों को दुख करना चाहिए कि नहीं, अपने स्वजन, सबसे बड़े स्वजन, अपनी माँ, अपने पिता, अपने जन्मजात पुत्र पुत्री, ये अगर देहांत हो जाते हैं। देखिए इस प्रसंग में चित्रकेतु महाराज से तो हमने सुना कि नारद मुनि की कृपा से उनके दुख दूर हो गए। भक्तों इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, भक्त का भी हृदय होता है, अब जब जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, भक्त का भी एक हृदय होता है, वो पत्थर नहीं है। अपने शरीर से संबंधित जो भी स्वजन है, जो अपने बहुत प्रिय हैं, माँ हो, पिता हो, भाई हो, या पत्नी हो, या पुत्र हो, सबसे ज्यादा संबंध माँ का संतान से है, तो ऐसे स्थिति में जब किसी का पुत्र शरीर छोड़ देता है तो स्वाभाविक है कि भक्त होने के नाते दुख लगता है। लेकिन उस स्थिति से हमें पार होना है। इसके लिए बेस्ट उदाहरण है, दो व्यक्ति हैं, एक का पुत्र का देहांत हो गया, इतने हताश हो गए, हताश दोनों हुए, दुखी दोनों हुए, दोनों का प्रिय पुत्र था, तो एक ने फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो गए और अपने कर्तव्य को करने लगे, अपनी भक्ति को करने लगे, और दूसरा इतने हताश हो गए, इतने दुखी हो गए कि सारे कर्तव्य को छोड़ के वो बिल्कुल कर्तव्य से पीछे हट गए। उदाहरण दिया जाता है अर्जुन और द्रोणाचार्य का, दोनों के पुत्र मरे हुए थे। पहले अगर अर्जुन के केस में देखेंगे, आप सब जानते हैं महाभारत में अभिमन्यु का वध हो गया, और अभिमन्यु जैसा महान योद्धा त्रिभुवन में उस समय कोई नहीं, इतना कम उम्र में 7-7, 6-6 महारथियों को एक परास्त कर देना, वो भी इतने महान तेजस्वी महारथी, असंभव है। आप लोग महाभारत देखे होंगे या पढ़े होंगे, अभिमन्यु जैसा योद्धा, तो अभिमन्यु का जब वध हो जाता है, आप लोग बताइए अर्जुन को दुख लगा या नहीं लगा, सही बोल रहे हैं? तो महाभारत युद्ध से पहले क्या अर्जुन ने गीता नहीं सुने थे? गीता का भाषण कब हुआ? महाभारत युद्ध से पहले, मतलब मोक्षदा एकादशी के दिन, पहले दिन, जब अर्जुन पूरा 18 अध्याय गीता सुने थे, फिर भी क्यों दुख किए, प्रश्न है। अभिमन्यु जब, उनको तो पता होना चाहिए कि भगवान ने सबसे पहले बोले थे कि आत्मज्ञान दिए थे, सांख्य योग दिए थे, अर्जुन को दुख लगा, फिर भी अर्जुन दुखी हो गए, है ना। तो अर्जुन का दुखी होना स्वाभाविक है एक पिता के लिए, और ऐसे अनमोल पुत्र, अकेला एक पुत्र अभिमन्यु, वो भी इतने बुरी तरह से, इतना षड्यंत्र करके और घातक अस्त्रों से सब लोगों ने मिलके एक साथ, ये सब देख के स्वाभाविक है अर्जुन को दुख लगना, अर्जुन दुखी हो गए, लेकिन भगवान साथ में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम यस्यंग पक्षे जनार्दन, भगवान साथ में थे, भगवान सारथी थे, साक्षी थे, साथी थे, सब कुछ थे। और जिसके वजह से अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, और अपने युद्ध करने का जो कर्तव्य है उसको उन्होंने बनाए रखा, और अगले दिन फिर युद्ध किए और जयद्रथ का वध किए। जयद्रथ का वध के समय भी असंभव था, हा ना, असंभव था, जिसको, क्योंकि भगवान साक्षी थे और साथी थे, इसलिए भगवान की कृपा से अर्जुन ने वो करके दिखाए, मतलब कर्तव्य से वो कर्तव्य में अड़िग रहे। द्रोणाचार्य के केस में क्या हुआ, द्रोणाचार्य को 100% पता था, हम में से सबको पता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी है, आप जानते हैं अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी है, और द्रोणाचार्य को पता था कि अश्वत्थामा को कोई नहीं मार सकता, लेकिन अश्वत्थामा हत, ये जब उन्होंने सुना उस समय तुरंत उन्होंने सारे अस्त्रों को त्याग दिए। इसका कई एंगल से आप देख सकते हैं, कई दृष्टिकोण से, एक ये है तुरंत उन्होंने अस्त्रों को त्याग दिया, और एक बार बस युधिष्ठिर महाराज से थोड़ा सा एक प्रमाण चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज से सुनना चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिए, भगवान ने जैसे सुनते हैं शंख बजाए उस समय, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हत, लेकिन अश्वत्थामा हत, जब पिता खुद को पता है कि मेरा पुत्र चिरंजीवी है, कभी नहीं मर सकता, तो इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कोई भी कुछ बोल दे लेकिन अश्वत्थामा कभी नहीं मर सकता, आज भी अश्वत्थामा है। तो उन्होंने हताश हो गए, निराश हो गए, बिल्कुल कैसे ना, फ्रस्ट्रेटेड, डिवास्टेशन हो गया उनके जीवन में, बेकार ये सब, मेरा पुत्र ही नहीं तो मैं क्यों युद्ध करूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने सारे अस्त्रों को सब त्याग दिया, फिर वो समाधि में बैठ गए। फिर विधि का विधान है, धृष्टद्युम्न ने उनको मारना था, धृष्टद्युम्न ने उनको वध किया। तो किसी बहुत ही बड़ी दुखदायी घटना में, जिसको कहते हैं हार्ट ब्रेकिंग, हृदय को तोड़ने वाला, हाँ, हृदय को, हृदय विदारित घटना में व्यक्ति का हताश हो जाना, निरुत्साहित हो जाना, ये स्वाभाविक है, लेकिन डिफरेंस है डिवोटी और एक नॉन डिवोटी में, भक्त और अभक्त में। भक्त फिर भी दुख तो लगता है, लेकिन अपने कर्तव्य को फिर से वो करने लगता है, और गुरु कृष्ण के मार्गदर्शन से फिर से वो स्थित हो जाता है अपने स्वरूप में, अपने कर्तव्य में, कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है, अपना जो स्वधर्म है वो करने लगता है। लेकिन अभक्त जो है, बस एक बार अगर अपना बेटा चला गया या कुछ हो गया तो सब कुछ छोड़ दिया, कई बार तो सुसाइड कर लेते हैं, जीवन को त्याग देते हैं, मेरे जीवन में वो रहा ही कहां, ऐसा हो गया मेरे पत्नी के साथ, मेरे पुत्र के साथ, फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना जीवन भी नाश कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्जुन की तरह होना चाहिए। हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।